ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायः शिवभद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम स्कंध 9 अध्याय 6 श्लोक संख्या 26 में तात्पर्य है। 9 से 25 तक तात्पर्य नहीं है। श्लोक संख्या 9 से 25 तक केवल अनुवाद दिया है, तो अनुवाद भी पढ़ देते हैं। 9 से 8 हुआ था ना, आठव्रत। ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्कर्म गुरुन्याभिहितं नृपः देशात्रे सारयामास श्रुतं त्यक्त विधिरुचा। जब राजा इक्ष्वाकु वशिष्ठ द्वारा बताए जाने पर समझ गए कि उनके पुत्र विकुक्षी ने क्या किया है, तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुए। इस प्रकार उन्होंने विकुक्षी को देश छोड़ने की आज्ञा दे दी, क्योंकि उसने विधि विधानों का उल्लंघन किया था। क्या उल्लंघन किया था? बिना पितरों को अर्पण किए ही वो खा लिया था। बिना भोग अर्पण किए खा लेना वो एक अपराध है। तो पितरों को मांस तर्पण करने के जंगल में आखेट करने के लिए गया था, और जंगल में वो थक गया और भूख लगी, तो जिन पशुओं को उसने आखेट में मारा था पितृ तर्पण के लिए, तो उसमें से एक खरगोश को खा लिया। और जब नगर में आया, तो जब उन पशुओं को पितरों को तर्पण करने के लिए वशिष्ठ मुनि को सौंपा गया, इक्ष्वाकु ने दिया, तो वशिष्ठ मुनि समझ गए कि ये जो भोग है पहले से इसमें से कुछ अंश खा लिया गया है। तो कोई भी वस्तु भगवान को या देवताओं को अर्पण करने से उसमें कुछ खा लेना तो सब भोग दूषित हो जाता है। इसलिए यहाँ डीटी किचन में भी कोई भी वस्तु बिना भोग लगे कोई लेना भी अपराध है, उसमें से कुछ निकाल लेना भी अपराध होता है बिना भोग अर्पण किए। तो विकुक्षी ने इक्ष्वाकु पुत्र विकुक्षी उसमें से जो मांस था खा लिया था। तो वशिष्ठ मुनि जैसे ही अर्पण करने के लिए उसको शुद्धि कर रहे थे, तो उनको ज्ञात हो गया कि इसमें से कुछ वस्तु खा लिया गया है। जब राजा इक्ष्वाकु वशिष्ठ द्वारा बताए जाने पर समझ गए तो उनके पुत्र विकुक्षी ने क्या किया है, तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुए। इस प्रकार उन्होंने विकुक्षी को देश छोड़ने की आज्ञा दे दी। इसके अपराध दंड क्या दिए कि देश से ही निकाल दिए। देश से ही निकाल दिए इक्ष्वाकु अपने पुत्र विकुक्षी को। सतु विप्रेण संवादम ज्ञापके न समाचरन त्यक्त्वा कलेवरम जोगी सतेनावापयत परम। महान एवं विद्वान ब्राह्मण वशिष्ठ के साथ परम सत्य विषयक वार्तालाप के बाद उनके द्वारा उपदेश दिए जाने पर महाराज इक्ष्वाकु विरक्त हो गए और उन्हें जोगी के नियमों का पालन करते हुए भौतिक शरीर त्यागने के बाद परम सिद्धि प्राप्त की। पितर्युपरते भेत्य विकुक्षे पृथ्वी मिमाम सास दीजे हरिम जग गई ससाद इति विश्वतः। अपने पिता के चले जाने पर विकुक्षी अपने देश लौट आया और पृथ्वी लोक पर शासन करते हुए तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए विविध यज्ञ करते हुए वह राजा बना। बाद में विकुक्षी ससाद नाम से विख्यात हुआ। जब इक्ष्वाकु जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए तब उनका पुत्र विकुक्षी पुनः आया और शासन करने लगा, राजकार्य संभाल लिया। पुरंजयस्तस्य सूत इंद्रवाह इति रितः ककुस्थ इति चाप्युक्तः श्रेणु नामानि कर्मभिः। हिंदी में नहीं आता है। ससाद का पुत्र पुरंजय जो इंद्रवाह के रूप में कभी कभी ककुष्ठ के नाम से विख्यात है, अब उसे यह सुनो कि उसने विविध कार्यों के लिए भिन्न भिन्न नाम किस प्रकार प्राप्त किए। तो विकुक्षी जो राजा बना और बहुत प्रकार से यज्ञ किया भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो उस बाद में उसके कई नाम हो गए, जैसे ससाद, विकुक्षी ससाद नाम से विख्यात हुआ और ससाद का पुरंजय हुआ जो इंद्रवाह के रूप में और कभी कभी ककुष्ठ के नाम से विख्यात है, हम उसे सुनो कि उसने विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न नाम किस प्रकार प्राप्त किए। कृतांत आसित समरो देवा नाम सह दानवई प्राणी प्राणी ग्राहो वृतो वीरो दैवर दत्य पराजितई। पूर्व काल में देवताओं तथा असुरों के मध्य एक घमासान युद्ध हुआ। पराजित होकर देवताओं ने पुरंजय को अपना सहायक बनाया और तब असुरों को पराजित कर सके, अतः यह वीर पुरंजय कहलाता है, अर्थात जिसने असुरों के निवासों को जीत लिया है। वचना देव देवस्य विष्णु विश्वात्मनः प्रभो वाहन नत्य वृतस्तस्य बभू वेन्द्रो महावृष। पुरंजय ने सारे असुरों को इस शर्त पर मारना स्वीकार किया कि इंद्र उसका वाहन बनेगा, किंतु गर्ववश इंद्र ने यह प्रस्ताव पहले अस्वीकार कर दिया, किंतु बाद में भगवान विष्णु के आदेश से उसने इसे स्वीकार कर लिया और पुरंजय की सवारी के लिए वह बड़ा सा बैल बन गया। पुरंजय ने सारे असुरों को इस शर्त पर मारना स्वीकार किया कि इंद्र उसका वाहन बनेगा, किंतु गर्ववश इंद्र ने यह प्रस्ताव पहले अस्वीकार कर दिया किंतु बाद में भगवान विष्णु के आदेश से उसने इसे स्वीकार कर लिया और पुरंजय की सवारी के लिए वह बड़ा सा बैल बन गया। ससन्नधो धनुर्दिव्यम आदाय विशिखांचितान अस्तूय मानस मारुह्य युषु ककुदिस्थित। तेजसाप्रायितो विष्णु पुरुषस्य महात्मनः प्रतीच्याम दिशि दैत्यानां नरुणस्त्रीदशैपुरम्। कवच से भली भांति सुरक्षित होकर और युद्ध करने की इच्छा से पुरंजय ने अपना दिव्य धनुष तथा अत्यंत तीक्ष्ण बाण धारण किए और देवताओं द्वारा अत्यधिक प्रशंसित होकर वह बैल रूपी इंद्र की पीठ पर सवार हुआ। तथा उसके हिले तथा उसके डीले पर बैठ गया, इसलिए वह ककुष्ठ कहलाता है। परमात्मा तथा परम पुरुष भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्त करके पुरंजय उस बड़े बैल पर सवार हो गया, इसलिए वह इंद्रवाह कहलाता है। देवताओं को साथ लेकर उसने पश्चिम में असुरों के निवास स्थानों पर आक्रमण कर दिया। तस्तस्याचाभूत प्रधनम तुमूलम लोम हर्षणम यमाय भल्लैर नद्यत्यान अभिर्ययुर्मिधे। असुरों तथा पुरंजय के मध्य घनघोर लड़ाई छिड़ गई। निसंदेह यह इतनी भयानक थी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जितने सारे असुर पुरंजय के समक्ष आने का साहस करते, वे सभी उसके तीरों से तुरंत यमराज के घर भेज दिए जाते। तस्य सुपाताभिमुखम युगान्तग्निनिवल्बणम विसृज्य दद्रु गुरुदैत्या हन्यमाना समाल्ययम्। इंद्रवाह के अग्नि उगलते तीरों से अपने को बचाने के लिए असुर जो अपनी सारी सेना के मारे जाने के बाद बचे थे, तेजी से अपने अपने घरों को भाग खड़े हुए, क्योंकि अग्नि युग के अंत में उठने वाली प्रलयाग्नि के समान थी। जित्वा परम धनम सर्वम सस्त्रीलिकं वज्रपाणये प्रत्ययच्छस्य राजर्षिः इति नामाभिराहितः। शत्रु को जीतने के बाद संत सदृश राजा पुरंजय ने वज्रधारी इंद्र को सब कुछ लौटा दिया, जिसमें शत्रु का धन तथा पत्नियां सम्मिलित थीं। इसी हेतु वह पुरंजय नाम से विख्यात है। इस तरह पुरंजय अपने विविध कार्यकलापों के कारण विभिन्न नामों से जाना जाता है। पुरंजयन से पित्रो भूत नेता तत्सुतः पृथु विश्वगंधि ततः चंद्र जीवनाश्वस्त तत्सुतः। पुरंजय का पुत्र अनेना कहलाया, अनेना का पुत्र पृथु, और पृथु का पुत्र विश्वगंधि, विश्वगंधि का पुत्र चंद्र हुआ, और चंद्र का पुत्र जीवनाश्व था। सावस्तस्तत्सुतो येन सावस्ति निर्ममे पुरी बृहदस्तस्तुता सावस्ति ततः कुवलयाश्वकः। जीवनाश्व का पुत्र सावस्त था, जिसने सावस्ति नामक पुरी का निर्माण कराया। सावस्त का पुत्र बृहदस्व था, और उसका पुत्र कुवलयाश्व था। इस तरह यह वंश बढ़ता रहा। यह प्रियार्थ मुतकस्य धुंधुनामासुरं बलि सुता नामेक विसंत्या सहस्रैरहन अध्युतः। उतंक ऋषि को संतुष्ट करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली कुवलयाश्व ये धुंधु नामक असुर का वध किया। उसने अपने 21,000 पुत्रों की सहायता से ऐसा किया। धुंधुमार इति ख्यात ततः सुतास्य च धुंधुमार इति ख्यात तत्सुतास्य च जज्वलु। धुंधुर मुखाग्निना सर्वे यत्र एवावशेषितः। दृढ़ास्व कपिलास्वश्च भद्रास्व इति भारत दृढ़ास्व पुत्र हरियश्व निखुंब सत्सुतस्मृत। हे महाराज परीक्षित, इस कारण से कुवलयाश्व धुंधुमार कहलाता है, किंतु उसके 3 पुत्रों को छोड़कर शेष सभी धुंधु के मुख से निकलने वाली अग्नि से जलकर राख हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम हैं दृढ़ाश्व, कपिलाश्व तथा भद्राश्व। दृढ़ाश्व के हरियाश्व नामक पुत्र हुआ, जिसका पुत्र निकुंभ नाम से विख्यात है। बहुलाश्व निकुंभस्य कृशांशोस्थास्य सेनजित जो नाश्व भवस्तस्य सोनपत्यो वनम गतः। निकुंभ का पुत्र बहुलाश्व था, बहुलाश्व का पुत्र कृशाश्व, और कृशाश्व का पुत्र सेनजित हुआ, सेनजित का पुत्र जोनाश्व था, और जोनाश्व के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह गृहस्थ जीवन त्याग कर जंगल चला गया। भार्या सतेन निर्विन्नम ईश्वरस्य कृपालवः इष्टिं स्म वर्तयाम चक्रुर ऐन्द्रितेषु समाहितः। यद्यपि जोनाश्व अपनी 100 पत्नियों सहित जंगल में चला गया, किंतु वे सभी अत्यंत खीन थी, तथापि जंगल के ऋषि राजा पर अत्यंत दयालु थे, अतएव मनोजोग पूर्वक इंद्र यज्ञ करने लगे, जिससे राजा के पुत्र उत्पन्न हो सके। तो ये श्लोक की आवृत्ति करेंगे, मैं पर ले आइए। भार्या सतेन निर्विन्न ऋषो यस्य कृपालवः इष्टिं स्म वर्तयाम चक्रुर ऐन्द्रिं तेषु समाहिता। भार्या सतेन निर्विन्न ऋषो यस्य कृपालवः इष्टिस्म वर्तयाम चक्रुर ऐन्द्रिं तेषु समाहिता। भार्या सतेन निर्विन्न ऋषो यस्य कृपालवः इष्टिस्म वर्तयाम चक्रुर ऐन्द्रिं तेषु समाहिता। भार्या सतेन निर्विन्न ऋषो यस्य कृपालवः इष्टिस्म वर्तयाम चक्रुर ऐन्द्रिं तेषु समाहिता। भार्या सतेन निर्विन्न ऋषयो यस्य कृपालवः इष्टिं स्म वर्तयाम चक्रुर ऐन्द्रिं तेषु समाहिता। पढ़िए चतुर्भुज प्रभु। भार्या सतेन निर्विन्न ऋषयो यस्य कृपालवः इष्टिं संवर्तयाम चक्रुर ऐन्द्रिं तेषु समाहिता। पढ़िए मुकुंद माधव प्रभु। पढ़िए तमाल जी। इष्टिस्मा वर्तयाम चक्रुर ऐन्द्रिं तेषु समाहिता। भार्या सतेन निर्विन्न ऋषो यस्य कृपालवः इष्टिं स्म वर्तयाम चक्रुर ऐन्द्रिं तेषु समाहिता। भार्यां सतेन निर्विन्न ऋषो यस्य कृपालवः इष्टिं स्म वर्तयाम चक्रुर ऐन्द्रिं तेषु समाहिता। पढ़िए तमल जी। श्लोक सबको पढ़ना चाहिए, कम से कम एक श्लोक का तो आवृत्ति होगा, नित्यम भागवत सेवया, तो रोज ज्यादा तो एक श्लोक तो हम पाठ कर सकते हैं तो हमारी वाणी शुद्ध होगी, क्योंकि उत्तम श्लोक गुणानुवाद भागवत के श्लोक को उत्तम श्लोक कहा गया है। एक चरण भी, चार चरण में एक चरण भी अगर कोई उच्चारण करता है तो उसका बहुत लाभ दिया है। आए हाँ, तो प्रयास करना चाहिए सबको पढ़ने के लिए, और ज्यादातर जो वरिष्ठ हैं उनको जरूर फॉलो करना चाहिए, और पढ़ेंगे तो दूसरे को भी उत्साह आएगा, पढ़ना चाहिए। इसलिए भागवत में महात्म दिया है। हाँ, तो चलिए वर्ड टू वर्ड शब्दार्थ है। भार्या सतेना, एक सौ पत्नियों के साथ, निर्विण्णा अत्यंत क्षीण, ऋषया ऋषिगण, अस्य उस पर, कृपालव अत्यंत कृपालु, इष्टिम एक अनुष्ठान, स्म भूतकाल में, वर्तयाम चक्रु संपन्न करने लगा, ऐन्द्रिम इंद्र यज्ञ, ते वे सभी सुसमाहिता अत्यंत सावधान। अनुवाद तत्पर श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, यद्यपि जीवनाश अपनी एक सौ पत्नियों सहित जंगल में चला गया, किंतु वे सभी अत्यंत क्षीण थीं। तथापि जंगल के ऋषि राजा पर अत्यंत दयालु थे, अतवे मनोजोग पूर्वक इंद्र यज्ञ करने लगे जिससे राजा के पुत्र उत्पन्न हो सके। अब आवृत्ति करेंगे। यद्यपि जीवनाश्व अपनी एक सौ पत्नियों सहित जंगल में चला गया, किंतु वे सभी अत्यंत क्षीण थीं। तथापि जंगल के ऋषि राजा पर अत्यंत दयालु थे, अतः मनोजोग पूर्वक इंद्र यज्ञ करने लगे जिससे राजा के पुत्र उत्पन्न हो सके। तत्पर्य, यदि कोई चाहे तो अपनी पत्नी के साथ वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश हो सकता है, किंतु वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ है गृहस्थ जीवन से पूर्ण विरक्ति। यद्यपि जीवनाश्व गृहस्थ जीवन से विरक्त हो चुका था, किंतु वे और उसकी पत्नियां कोई संतान न होने के कारण सदा क्षीण रहती थीं। तो यह इस श्लोक में इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के बारे में विस्तार से वर्णन है। इक्ष्वाकु मनु पुत्र हैं, और मनु के इक्ष्वाकु जो राम के वंशज हैं, और इक्ष्वाकु का विकुक्षी, और इस तरह से विकुक्षी से लेकर के जीवनाश्व तक इन सारे राजाओं का वर्णन है श्लोक संख्या 9 से 26 तक में। तो उसका किन किन राजाओं का उल्लेख है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जानते हैं इक्ष्वाकु बहुत बड़े राजा थे, तो भगवान भगवत गीता प्रारंभ में विवस्वान को दिया था, विवस्वान ने मनु को, और मनु अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिए थे। इक्ष्वाकु से इस तरह से गीता की परंपरा जो है आ रही है। तो कौन कौन राजा हैं थोड़ा पढ़ते हैं। क्या पीछे बातचीत करते हैं आप लोग, कम से कम सुनिए तो। मनुपुत्र इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए, जिनमें से विकुक्षी, निमि तथा दंडक सबसे बड़े थे। इक्ष्वाकु के पुत्र संसार के विविध भागों के राजा बने। इनमें से विकुक्षी ने यज्ञ के विधि विधानों का उल्लंघन किया था। विकुक्षी के पुत्र ने देवताओं के लिए असुरों से युद्ध किया। अपनी बहुमूल्य सेवा के कारण वह पुरंजय, इंद्रवाह तथा ककुश नाम से विख्यात हुआ। इंद्रवाह मैंने इंद्र को वाहन बनाया था, युद्ध में शर्त रखा था, मैं देवताओं की तरफ से तभी लड़ूंगा जब इंद्र जो है वाहन बनेंगे, तो वही बैल के रूप में वाहन बने थे, इसलिए पुरंजय का नाम है इंद्रवाह, इंद्र को वाहन बनाया। पुरंजय का पुत्र फिर अनेना, और अनेना का पुत्र पृथु हुआ, और पृथु का पुत्र विश्वगंधी, विश्वगंधी का पुत्र चंद्र हुआ, चंद्र का पुत्र जुवनाश्व, जिसका वर्णन सश्लोक में हुआ है, और फिर उसका पुत्र श्रावस्त हुआ, जिसने श्रावस्तीपुरी का निर्माण कराया। श्रावस्त का पुत्र बृहदश्व हुआ। अनेक राजाओं का इसमें नाम दिया है। तो जो इस श्लोक में अवनाश्व का वर्णन है, तो उसकी जुवनाश्व के कोई पुत्र नहीं थे, सब पत्नियां थीं, तो जंगल में चला गया था पत्नियों से वानप्रस्थ लेकर। वानप्रस्थ में प्रारंभ में पत्नियों के साथ भी रहा जा सकता है। तो जुवनाश्व जब वानप्रस्थ लेकर के जंगल में गया, तो वहाँ उसकी पत्नियां भी खिन्न रहता था कि पुत्र नहीं थे, दुखी रहता था। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उसकी पत्नियां कोई संतान न होने के कारण सदा खिन्न रहती थी, दुखी रहती थी। तो ऋषियों को दया आ गई, वहां जंगल में रहने वाले ऋषि लोग उसके लिए यज्ञ किए, इंद्र यज्ञ, जैसे बहुत सारा यज्ञ, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ है, जैसे महाराज दशरथ के लिए श्रृंगिरीश ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था पुत्र प्राप्ति के लिए, उनके पुत्र हुए थे। तो ऋषि जुवनाश्व के लिए यज्ञ, इंद्र यज्ञ किए, तो उसके पुत्र हुए। तो कैसे पुत्र हुए, तो यज्ञ के समय ऋषियों ने एक जल को अभिमंत्रित किया था, कलश में जल को अभिमंत्रित करके कि जल जो भी पिएगा उसको पुत्र होगा। तो एक समय में उस अभिमंत्रित कलश के जल को यज्ञ मंडप में ही रखकर ऋषि लोग रात्रि में सो रहे थे, तो उसी समय जुवनाश्व को जो जंगल से आ रहा था, और जंगल से आया तो उसको बहुत तेजी से प्यास लगा, तो सारे ऋषि लोग सो रहे थे, प्यास से इतना वो विक्षुब्ध था कि वो कलश का जो अभिमंत्रित जल था उसी को पी लिया। तो इसके बाद ऋषि लोग जब जगे तो देखे कि कलश में जो जल था, जो अभिमंत्रित किया गया था, वो कलश का जल खाली है। तो पता लगाए लोग कि कौन पिया, तो मालूम पड़ा कि राजा जुवनाश्व ने ही पी लिया है। इसके आगे श्लोक में आएगा। एक रात्रि को प्यासे होने के कारण राजा यज्ञशाला में घुस गया, और जब उसने देखा कि सारे ब्राह्मण लेटे हुए हैं, तो उसने अपनी पत्नी के पीने के लिए रखे अभिमंत्रित किए गए जल को पी लिया। उसके पत्नियों को पीने के लिए अभिमंत्रित जल रखा गया था, मंत्र के द्वारा उसको शुद्ध करके उसमें पुत्र प्राप्ति करने के बहुत सारे मंत्र अभिमंत्रित किए गए थे, तो जल जुवनाश्व ने ही पी लिया। तो इसके बाद ऋषि लोग विचार करने लगे, वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार ब्राह्मण द्वारा संपन्न यज्ञ इतने शक्तिशाली होते हैं कि वैदिक मंत्रों से पवित्र किया हुआ जल वांछित फल देने वाला हो सकता है। यहाँ पर ब्राह्मणों ने जल को पवित्र किया था जिससे राजा की पत्नी उसे यज्ञ में पी सके, किंतु दैववश राजा रात में वहां गया और प्यासा होने के कारण वही जल पी गया। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि राजा के दाहिने कोख से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जल पी लिया तो जो मंत्र का प्रभाव है होगा ही, और वो भी ऋषि मुनि उस जल में मंत्र अभिसिंचित किए थे तो उसका प्रभाव होना ही था। जैसे कुंती महारानी ने जो दुर्वासा मुनि ने जो मंत्र दिया था और उसको सूर्य पर परीक्षण किया था उससे पुत्र हुआ, यह विवाहित थी। तो कोई भी श्रेष्ठ गुरु या ब्राह्मण जब कोई मंत्र देता है तो उसका प्रभाव मतलब विफल नहीं होता है। तो मंत्रित जल पीने के चलते जोनाशु को एक पुत्र हुआ और वही आगे चल करके मंधाता नाम से विख्यात हुए, जो पूरे पृथ्वी के सम्राट हुए। मंधाता के बारे में ऐसा कहा जाता है, आगे के श्लोकों में वर्णन है कि सूर्य के उदय होने से अस्त तक, जहां से सूर्य उदय होता था और जहां अस्त होता था, पूरे पृथ्वी में मंधाता का साम्राज्य था। पृथ्वी के सम्राट थे मंधाता, बड़े पराक्रमी थे क्योंकि ऋषियों के अभिमंत्रित जल से उत्पन्न हुए थे। तो ऐसी अनेक घटनाएं हैं, जैसे पीछे के अध्याय में आप पढ़े होंगे सुदुम्न इलावृत क्षेत्र में गया तो स्त्री बन गया था, सुदुम्न की कथा। यहाँ उस पर्वत पर शिव जी पार्वती निवास करते थे तो शिव जी तो कोई घर बनाकर नहीं रहते हैं, तो पार्वती जी को कभी स्नान करना हो, वस्त्र बदलना हो तो कोई न कोई आ जाता था, कोई न कोई सत्संग के लिए वहां आया करता था। तो शिव जी ने उस क्षेत्र को निषिद्ध कर दिया था, प्रोहिबिटेड एरिया बना दिया, प्रोहिबिटेड फॉर एनी मैन, किसी प्रकार के आदमी नहीं आ सकते हैं, निश्चित क्षेत्र हो गया मनुष्य मानव जाति के लिए, स्त्रियों का प्रवेश हो सकता है। तो उस क्षेत्र में सुदुम्न ने एक बार आखेट करते हुए गए तो स्त्री बन गए थे, जितने घोड़े थे सब घोड़ी बन गए थे, जितने सैनिक सब स्त्री बन गए, ऐसा प्रभाव है। तो यहाँ पर भी ऋषियों के द्वारा जो जल अभिसिंचित अभिमंत्रित किया गया था, भूल से जो नाचु ने पिया तो उससे ही पुत्र हुआ जो मंधाता नाम से विख्यात हुए। और मंधाता मथुरा राजधानी थी उनकी, मथुरा के राजा थे। एक समय में सौभरी मुनि जमुना में मथुरा वृंदावन के आसपास में तपस्या कर रहे थे, जल में सौभरी मुनि जल में तपस्या कर रहे थे तो मछलियों को देख करके उनके मन में काम का उद्वेग हो गया। तो ऋषि इतने काम से पीड़ित हुए कि राजा मंधाता के पास गए और विवाह करने के लिए उन्हें प्रस्ताव रखा कि मैं आपकी पुत्रियों से विवाह करना चाहता हूँ। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो आदमी खुद विवाह का प्रस्ताव लेकर लड़की के माता पिता के पास जाता है, प्राय जनरली लड़की के तरफ से प्रस्ताव लेकर जाते हैं, लड़की के माता पिता उसके भाई या गुरुजन जाते हैं लड़के के माता पिता के पास कि भाई मैं आपके लड़के से लड़की का विवाह करना चाहता हूँ। जैसे स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के साथ कर्दम मुनि के पास गए विवाह के लिए, देवहूति का विवाह करना था तो स्वयंभू मनु कर्दम मुनि के आश्रम में गए थे, लेकिन यहाँ स्वयं सौभरी मुनि स्वयं विवाह के लिए मंधाता के पास गए और कहे कि मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो मंधाता तो पहले कुछ बोले नहीं और मना भी नहीं कर सकते हैं कि नहीं हम अपनी पुत्रियों का विवाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जानते थे कि सौभरी मुनि का प्रभाव जो है तपस्या से बहुत बढ़ गया था, वो कुछ भी बोले तो हो सकता है, साप भी दे सकते हैं, इसलिए मंधाता मना नहीं किए। बोले ठीक है, अगर ऐसा लड़कियां आपको पसंद करती हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो वही मंधाता की लड़कियों से विवाह हुआ, लेकिन राजा के अभिप्राय को सौभरी मुनि समझ गए। सौभरी मुनि जल में तपस्या करने से उनका शरीर जो है बिल्कुल मछलियां उनके मांस को भी खा गई थी, हड्डी इत्यादि दिखाई दे रहा था, यह शरीर बिल्कुल विकृत हो गया था, कुरूप हो गया था, शरीर में सब ये हो गए थे, जैसे जलकाई हो गई थी, बाल में जटा हो गया था। तो राजा के अभिप्राय को सौभरी भी समझ गए कि राजा समझ रहे हैं कि इनको कौन पसंद करेगा, इनको कोई तो लाइक नहीं करेगा पति के लिए। तो जब ऐसा ये हुआ तो आगे से जब लड़कियों को स्वयंवर में वरमाला डालने का समय हुआ तो सौभरी मुनि अपने तपस्या से बहुत सुंदर बन गए, बहुत सुंदर, जैसे कोई ब्यूटी पार्लर में जाकर बहुत सुंदर बन जाता है, मैन ब्यूटी पार्लर भी है। तो वो अपने तपस्या से अपने को इतना सुंदर बना लिए कि मंधाता के देखते 50 लड़कियों ने उनको जयमाल डाल दिया, 50 लड़कियों ने सौभरी को स्वीकार कर लिया, एक दो ही नहीं 50 लड़कियां थी मंधाता के 3 पुत्र और 50 लड़कियां थी। इस तरह से सौभरी मुनि का विवाह हो गया। तो मंधाता ये जूनाशु के पुत्र हुए जो श्लोक में वर्णन है। तो आज भी सौभरी मुनि के जो वंशज हैं राधा कुंड बरसाना उधर हैं, उनके वंशज अभी भी हैं सौभरी मुनि के, जो मंधाता की पुत्रियों से विवाह करने के बाद सौभरी का जो वंशज चला तो सौभरी मुनि के ही नाम से वो वंश चला है, जाना जाता है। तो मंधाता बहुत महान सम्राट हुए और इनके मंधाता के पुत्र हुए तीन पुत्र हुए मंधाता के, क्षितिज में जहाँ सूर्य उदय होकर चमकता है और जहाँ सूर्य अस्त होता है, वे सारे स्थान जूनाशु के पुत्र सुविख्यात मंधाता के अधिकार में माने जाते हैं। सौभरी ऋषि सस बिंदु की पुत्री बिंदुमती के गर्भ से मंधाता को 3 पुत्र हुए, कि पत्नी का नाम था बिंदुमती, इनके नाम थे पुरुकुश, अम्बरीश तथा महान योगी मुचकुंद। 3 महान पुत्र हुए, मुचकुंद, पुरुकुश और अम्बरीश। अम्बरीश की कथा आप लोग सुने कि किस तरह दुर्वासा मुनि उनको मारना चाहते थे। तो मुचकुंद बहुत प्रतापी राजा हुए, जो युद्ध में देवासुर संग्राम में एक बार स्वर्ग में गए थे युद्ध करने के लिए देवताओं की तरफ से। मुचकुंद बहुत वीरता से देवताओं को विजय दिलाए थे। तो देवताओं ने कहा कि आप बहुत बड़ा काम किए हैं, विजय दिलाए हैं, आप कि क्या सेवा हम लोग कर सकते हैं। तो मुचकुंद कहे कि मैं बहुत थक गया हूँ और मैं सोना चाहता हूँ, कोई डिस्टर्ब न करे, निर्विघ्न मैं सोना चाहता हूँ। कोई यात्रा से आता है तो दरवाजे पर लिख देता है नो डिस्टर्ब, लगाते हैं ना प्राय, कोई बड़े बड़े गुरु या कोई प्रभुपाद डिसाइपल आते हैं तो हमारे यहाँ भी कि भाई वह स्वस्थ हैं या थके हैं या यात्रा से आए हैं तो दरवाजे पर लिख दिया जाता है नो बडी कैन डिस्टर्ब, नो डिस्टर्ब। प्राय जीबीसी मीटिंग में सुंदर चैतन्य प्रभु प्राय लगाते हैं लिख लिख नो डिस्टर्ब। तो देवताओं ने कहा कि ठीक है, इसकी व्यवस्था हम लोग करते हैं, आप मतलब बिना किसी के डिस्टर्ब की आप सोएंगे। अगर कोई आपके नींद में डिस्टर्ब करेगा तो आपके दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो जाएगा। अगर कोई आपको डिस्टर्ब कर दिया, जगा दिया, तो आपके दृष्टि पड़ने से जलकर क्षार हो जाएगा। तो मुचकुंद महाराज ब्रजमंडल में एक जगह है जहाँ गुफा है, आप जब जाएंगे आदि बद्री डिग से, काम से, काम बंद से डिग जाएंगे, डिग से आदि बद्री ब्रजमंडल परिक्रमा में, तो उससे थोड़ी दूरी पर वो मुचकुंद गुफा है जहाँ मुचकुंद महाराज शयन किए थे। देवताओं ने आशीर्वाद ये वरदान दिया कि आप निर्विघ्न सोइए, आपको अगर कोई डिस्टर्ब किया तो आपके दृष्टि से जलकर राख हो जाएगा। वही जब जरासंध मथुरा पर अटैक करता था, बार बार अटैक करता था, तो उसके सेना में काल जवन भी था, बहुत बलशाली था, जो अफगानिस्तान का रहने वाला था। तो काल जवन को पृथ्वी का बहुत बड़ा वो नामी मतलब ये था, टेररिस्ट था, और उसके पीछे लाखों करोड़ों लोग थे। तो भगवान उसको वध कराना चाहते थे मुचकुंद के द्वारा, और मुचकुंद महाराज को दर्शन भी देना चाहते हैं। एक और वरदान देवताओं ने दिया था कि जो भी आपको जगाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा, और इसके बाद आपको भगवान का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन भी प्राप्त होगा। तो भगवान बड़ा झुकती रहती है कि भाई किसके द्वारा जगाएं, जो जगाएगा वो मर जाएगा, आप फिर मुझे दर्शन भी देना है, देवताओं की बात को सत्य करना है। तो वही काल जवन को ले गए भगवान, 17वीं बार भगवान जब रण छोड़कर भाग रहे थे तो काल जवन ललकार रहा था कि तुम बहुत डरपोक हो, मैं नहीं जानता था कि इतना डरपोक हो, कायर हो, रुको रुको। तो कभी भगवान उसको उसके समीप आ जाते थे, या कभी उनका पीताम्बर उनके हाथ में आ जाता था काल जवन के, तो सोचता था कि अब ये थक गया है, या कभी ऐसा भगवान करते थे जैसे अब थक गए हैं बिल्कुल, रुक जाते थे, हाँफने लगते थे, तो काल जवन को उत्साह आता कि अब तो इसको पकड़ लूंगा, अब थक गया है, ऐसे उसको लोभ दे करके उस गुफा में भगवान ले गए काल जवन को, जहां मुचकुंद महाराज सो रहे थे। और भगवान बड़े तेजी से जा करके अपना पीताम्बर मुचकुंद महाराज के ऊपर ओढ़ा दिए और अपने गुफा के एक दूसरे कोने में छुप गए। जब काल जवन आया उस गुफा में तो देखा कि ये तो डर करके सो रहा है, समझा कि कृष्ण ही सो रहे, कहा कि डरपोक कहीं का, तो मैं सोने से छोड़ दूंगा, जोर से लात मारा। तो मुचकुंद महाराज थे, जब मुचकुंद महाराज से देखे तो जलकर राख हो गया काल जवन। तब बाद में भगवान आकर फिर मुचकुंद महाराज को दर्शन दिए। तो मुचकुंद महाराज भी बड़े प्रतापी राजा थे जो मंधाता के पुत्रों में हैं, अम्बरीश मुचकुंद। तो इस तरह से भगवान मुचकुंद को दर्शन दिए और मुचकुंद बहुत बड़ा स्तुति किए। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो वंश है इक्ष्वाकु वंश, वो इसमें बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, इसी वंश में फिर भगवान राम आएंगे आगे चल करके कई पीढ़ियों बाद। तब ये विषय बड़ा थोड़ा जटिल है, इसका कैलकुलेशन करना बड़ा थोड़ा कठिन है। तो समय भी हो गया, मैं यहीं विश्राम देता हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है ना? ठीक है। हाँ, माइक में बोलिए, माइक दीजिए, माइक दीजिए। तमन जी को
हरे कृष्ण। आपने जो मंधाता पुत्र अम्बरीश का वर्णन किया कि हम लोग पहले सुन चुके हैं, तो ये मंधाता के पुत्र जो अम्बरीश हैं, ये अलग अम्बरीश हैं, और जिसको भगवान ने जिस अम्बरीश महाराज को चक्र प्रदान किया था, वे राजा नभाग के पुत्र थे, तो उसको हम लोग श्रवण कर चुके हैं। ये अम्बरीश अलग हैं, मंधाता पुत्र अम्बरीश को भगवान ने चक्र नहीं दिया था, वो नभाग के पुत्र अम्बरीश महाराज थे।
हो सकता है, धन्यवाद।
उसी में वर्णन है। ओके, हरे कृष्ण।
हो सकता है,
हो सकता नहीं, स्पष्ट है।
ठीक है, और कोई प्रश्न है?
हरे कृष्णा महाराज जी, आपने वो सौभरी मुनि के बारे में जो बताया कि जल में तपस्या करते करते उनका शरीर छिड़ हो गया था, मछलियां मांस तक खा गई थी, उसके बाद भी उनको शादी करने का इच्छा जागृत हुई, मंधाता के पास गए, उनकी 50 पुत्रियों से शादी कर लिया। तो ये सब, ये जो प्रसंग, ऐसा नहीं है कि ये पहला प्रसंग है, भागवत में ऐसे और भी प्रसंग है कि पूरा तपस्या करते हैं, पूरा छिड़ हो जाते हैं, फिर भी वो शादी करते हैं ऋषियों का। तो ऋषियों का ये प्रसंग सुनके थोड़ा सा भक्तों में हतोत्साहित होने का चांसेस रहता है कि ये शिक्षा, ये दीक्षा, ये संन्यास का क्या मतलब, कि पूरा लाइफ खत्म होने के बावजूद भी पूरा शरीर, मुंह में दांत भी नहीं रह जाए, पेट में आंत नहीं रह जाए, तो भी शादी करने की इच्छा जाग जाए, वासना मने जाएगी नहीं, तो फिर संन्यास और ये दीक्षा शिक्षा का क्या मतलब रहता है? ये क्या ये प्रश्न नहीं पैदा होता?
तो ये जो काम वासना है ना, मृत्यु पर्यंत रहती है, समझ गए ना? इसीलिए कोई यह नहीं कह सकता है कि मैं काम को जीत लिया हूं। शिव भी कामदेव को जला दिए, ब्रह्मा भी काम से प्रभावित होते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि मृत्यु पर्यंत जो है काम का प्रभाव रहता है। इसको प्रयास करते हैं लोग जीतने के लिए, उसको वेग को सहन करने के लिए। गीता में भगवान कहते हैं कि इस वेग को सहन करना चाहिए। तो सौभरी मुनि का जो दृष्टांत है, ये सौभरी मुनि के दृष्टांत से यहाँ ये आगे शिक्षा दी जाएगी कि सौभरी मुनि गरुड़ जी के प्रति एक अपराध कर दिए थे, वैष्णव अपराध। तो वैष्णव अपराध से मन में इस तरह की काम वासनाएं आती हैं। कोई भी कितना बड़ा भी साधक हो, योगी हो, किसी वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो उसके मन में ये वासनाएं जागृत होती हैं। यहाँ ये सिद्धांत आगे स्थापित किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि संन्यास तो नहीं लिए थे, योगी थे वो, जल में भजन साधना कर रहे, योग सिद्धि कर रहे थे। योग सिद्धि करना और भक्ति में थोड़ा अंतर होता है। जैसे विश्वा दुर्वासा योगी थे, योग की सिद्धियां जानते थे। अम्बरीश जो है शुद्ध भक्त थे भगवान के। तो योगी लोग ज्यादातर इस संसार में कुछ सिद्धि प्राप्त करके चमत्कार दिखाते हैं, अपना चमत्कार के लिए। ज्यादातर योगी लोग इस संसार में ही उपलब्धि प्राप्त करते हैं योग के द्वारा। जैसे योगी लोग सूक्ष्म बन जाना, बहुत छोटा रूप धारण कर लेना, और बड़ा रूप धारण कर लेना। तो जो सिद्धियां हैं अणिमा गणिमा इसमें और भक्ति में बहुत अंतर होता है। तो योगी थे, सिद्धि उपलब्धि प्राप्त किए थे, लेकिन यहाँ अभिप्राय है कि ऐसा कोई महान भक्त भी अगर वैष्णव का अपराध करता है तो वो गिर सकता है। वैष्णव अपराध से जो है, वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, वैष्णव अपराध को मत हाथी कहा गया है, मतवाला हाथी जो भक्ति लता को छिन्न भिन्न कर देता है। तो गरुड़ महान वैष्णव है, उनके प्रति अपराध से अम्बरीश का इस तरह से पतन हुआ था। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की।